ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही विशेष दिन है। आज से कार्तिक प्रारंभ होता है और साथ में आज शरद पूर्णिमा दिवस, जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ करने के लिए सबसे उत्तम दिन है। अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो आज के दिन अगर वो निरोगी होना चाहता है तो उसके लिए उत्तम दिन है। आज आप अगर चंद्रमा को ध्यान से देखेंगे तो आज का चंद्रमा लाल रंग का है, पूर्ण चंद्रमा लाल रंग का है। और हमारे शास्त्र कितने प्रमाणिक हैं ये आप पता कर सकते हैं चंद्रमा को देख करके, और शास्त्रों के उदाहरणों को चेक कर सकते हैं। तो आज एक बहुत ही शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु जो कि आज से प्रारंभ होती है, सर्दियों का समय, भगवान को पंखा करना बंद कर दिया जाता है। और साथ में आज ही से कार्तिक चतुर्मास का चौथा महीना प्रारंभ होता है। तो ये कार्तिक मास कुछ लोग एकादशी से एकादशी मानते हैं, कुछ लोग पूर्णमासी से पूर्णमासी मानते हैं, और कुछ लोग संक्रांति से संक्रांति मानते हैं। तो जो पूर्णमासी से मानते हैं उन्हें गौड़िया वैष्णव कहते हैं। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि पुरुषोत्तम मास महान है या कार्तिक मास महान है। पुरुषोत्तम मास अधिक मास जो कि 3 साल में एक बार आता है वो बड़ा है या फिर कार्तिक मास बड़ा है? क्योंकि जब जो मास आता है हर व्यक्ति यही कहता है ये मास सबसे बड़ा है। अधिक मास में भी अधिक भक्ति करते हैं और पुरुषोत्तम मास जिसे कहते हैं, और कार्तिक मास आता है तब इसे भी कहते हैं बहुत बड़ा मास है, साल में एक बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भक्ति करनी चाहिए। तो दोनों में से अगर प्रतिस्पर्धा हो, कॉम्पिटिशन हो, तो कौन सा सबसे अधिक बड़ा है? तो पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम नाम से ही आप जान सकते हैं, पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का महीना है। भगवान कृष्ण ने उसको अपना नाम दिया है पुरुषोत्तम। परंतु कार्तिक मास, इसको राधा रानी ने अपना नाम दिया है कार्तिक मास, क्योंकि राधा रानी का एक नाम है कार्तिका, उनकी माता का नाम है कीर्तिदा, पिता का नाम है वृषभानु। वृषभानु और कीर्तिदा का पुत्री होने के नाते इस मास का कार्तिका के नाम से जाना जाता है। तो ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। अब राधा रानी और कृष्ण में अगर कंपटीशन हो तो कौन जीतेगा? एक शक्ति है और एक शक्तिमान, तो एक कार्तिक का महीना है और एक पुरुषोत्तम महीना, कौन जीतेगा? तो बताते हैं कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम कृष्ण की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि श्रीमती राधा रानी कृष्ण की पूजा करती, उनसे प्रेम करती हैं। अगर श्रीमती राधा रानी कल से कृष्ण की पूजा बंद कर दे तो हम भी कृष्ण की पूजा बंद कर दें, क्योंकि हम श्रीमती राधा रानी को गौड़ीय वैष्णव सबसे ऊपर स्थिति में मानते हैं, क्योंकि उनकी परम सेविका है, उनकी शक्ति है, इस कारण से हम कृष्ण की पूजा करते हैं। इसलिए गौड़ीय वैष्णवों के लिए कार्तिक मास अधिक उत्तम हो गया। तो इस मास में सेवा करके आप भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। आज शरद पूर्णिमा के दिन भगवान ने कैसी लीला करी जिसे महारास कहते हैं? रास की चर्चा करना प्रारंभिक अवस्था में मुश्किल है। श्रील प्रभुपाद और हमारे वर्तमान आचार्यगण बताते हैं कि हमको ये जो रास है श्रीमद् भागवत के 12 स्कंदों में से 10वां स्कंद भगवान का हृदय बताया जाता है, और उस हृदय में रास पंचाध्याय भगवान का प्राण है। रास के 5 अध्याय हैं 10th कैंटो के अंदर, 29वें अध्याय से प्रारंभ करके 34वें अध्याय तक। लेकिन इस अध्यायों की चर्चा नहीं की जाती है, क्यों? क्योंकि इसमें एक बड़ी ध्यान देने वाली बात है। अगर आप भगवान को साधारण मनुष्य मानेंगे और आपने ये रास अध्याय सुन लिया तो आपकी काम वासना बढ़ जाएगी, और अगर आपने भगवान को भगवान मान लिया और आपने ये रास नृत्य की वर्णन सुन लिया तो आपकी काम वासना पूरी समाप्त हो जाएगी। तो बहुत ही ध्यान देने वाली, इसलिए जब तक आप श्रीमद् भागवत के 9 स्कंदों को ना पढ़ लें, कृष्ण को भगवान स्वरूप न समझ लें कि ब्रह्मांड नायक हैं और श्रीमती राधा रानी उनकी परम शक्ति हैं, हलादनी शक्ति श्रीमती राधा, तब तक हमको इस रास का चर्चा नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग रास नृत्य की नाटिका देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, आजकल एक सीरियल भी आ रहा है राधा कृष्ण के ऊपर, उन सीरियल्स को देखने से, उन चीजों को देखने से ज्ञान तो मिलेगा नहीं, अपराध होगा और काम वासना अधिक बढ़ेगी। जो जितनी अंदर इम्पेडिमेंट्स हैं, जितनी खलपतवार है, और आपका मेन पौधा वो नष्ट हो जाएगा, खलपतवार बढ़ती चली जाएगी अगर आप सही रूप से चिंतन अध्ययन मनन नहीं करेंगे। यहां पर बताया गया है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 29वें अध्याय का पहला श्लोक, इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, श्री भद्रायण उवाच भगवान अपि तरात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षया रन्तु मन चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। अब इसमें कहा गया भगवान अपि, मतलब कृष्ण के, भगवान का अर्थ लिखा है कृष्ण, कृष्ण मतलब भगवान, भगवान अपि, तो भगवान का रास नृत्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर रहा है। जैसे स्कूल के अंदर करते हैं कुछ लोग, एक लड़के को खड़ा कर दिया कृष्ण बना के, 10-15 लड़कियों को घुमा दिया, बोले क्या हो रहा है, बोले रास नृत्य हो रहा है, ये रास नृत्य नहीं हो रहा है। यहां पर भगवान होना चाहिए, क्या वो लड़का भगवान है, कौन सी अवस्था में हो रहा है? ये 8 वर्ष के भगवान है तब ये रास नृत्य हो रहा है, 8 साल के। आज भी 7-8 साल के बच्चे से ये उम्मीद नहीं की जाती, 7-8 साल का बच्चा काम वासनाओं में लिप्त होगा। तो आज से 5000 साल पूर्व, और कलयुग शुरू हुआ 5000 साल पहले, द्वापर युग में जाएं तो 125 साल और पीछे जाएं या 100 वर्ष पूर्व जाएं, तब क्या कोई सोच सकता 8 साल का बच्चा जिसके अंदर काम वासना हो। ओल रासलीला को लोगों ने बड़ा ही चीप ले लिया है, रासलीला रासलीला रासलीला, और कहते हैं जो व्यक्ति इतनी अनेक स्त्रियों के साथ नृत्य कर रहा है वो भगवान कैसे हो सकता है। इसीलिए भगवान का मतलब है जिनके अंदर अनंत कोटि ऐश्वर्य विराजमान है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे सुंदर है, सबसे आकर्षक है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे बड़े वैरागी है। 6 ऐश्वर्य होने के कारण उन्हें भगवान कहा जाता है, और वो ऐश्वर्य भी अनंत कोटि रूप में उनके अंदर विराजमान है। भगवान अपि तारात्रि, उस रात्रि में भगवान ने क्या किया, शरद उत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका फूलों की चारों तरफ वेली लगी हुई थी। मल्लिका फूल जानते हैं क्या होता है, चमेली का फूल, चमेली को संस्कृत में मल्लिका कहते हैं। मल्लिका फूल लगे हुए थे, उत्फुल्ल, उत्फुल्ल मतलब खिले हुए थे। अब रात्रि में फूल खिलता नहीं है, रात्रि में फूल मुरझा जाता है, लेकिन यहां देखिए रात्रि शारद उत्फुल्ल, रात्रि शरद रात्रि में मल्लिका फूल, मालती फूल जो ये थे मल्लिका, चमेली के फूल खिले हुए थे, और चंद्रमा पूर्ण रूप से खिला हुआ था। बड़ा प्रसन्न था कि आज भगवान एक क्रिया करने वाले हैं जिसे रास नृत्य कहा जाए। वहां पर विराजमान सभी स्त्रियां विवाहित थी, तो ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है। कोई अपनी पति को खाना बना रही थी, भगवान की एक वेणु बांसुरी की आवाज सुनकर भागी चली आई, बच्चों को सुला रही थी चली आई, उनकी वो क्रियाएं अपने आप चलती रही, रुकी नहीं। और ये यहां पर वर्णन आता है कि एक गोपी तो ऐसी थी जिसके कुछ पारिवारिक कारणों के कारण वो निकल नहीं पाई, इतना उसको विरह महसूस हुआ भगवान से ना मिल पाने के कारण, क्योंकि आत्मा के स्तर पर है सभी गोपी, कोई काम वासना में लिप्त नहीं है, लेश मात्र भी काम वहां विराजमान नहीं है, ये भगवान की लीला चल रही है। तो इसको समझने के लिए बुद्धि चाहिए, तो करने के लिए तो भगवान ही कर सकते और कोई नहीं कर सकता। जब कामदेव जिनके एक अंश से कोई मिस यूनिवर्स बन सकती है, वो विश्व सुंदरी बन सकती है, मिस वर्ल्ड बन सकती है, मिस्टर वर्ल्ड या मिस्टर इंडिया बन सकता है, वो कामदेव का अंश मात्र से व्यक्ति सुंदर बन सकता है, वो पूर्ण कामदेव भगवान के पास आया, कहता है भगवान आज आपको गिरा दूंगा, आज दिखाऊंगा कि मैं महान हूं, मैं सबके अंदर प्रवेश कर सकता हूं। भगवान ने कहा तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे, ऐसे दिन तुमको इन्विटेशन देता हूं जिस दिन महाराज नृत्य होगा, एक गोपी नहीं सैकड़ों गोपियां होंगी, उस दिन आना, तब मैं रास नृत्य करूंगा। और वहां पर भगवान ने सैकड़ों गोपियों के साथ रास नृत्य किया, कामदेव पूरा अपना वजन लगा करके रह गया और बाद में उसको उस स्थली से भागना पड़ा, क्योंकि वो कहीं पर भी प्रवेश नहीं कर पा रहा था। जैसे पानी का बहाव हो, डैम बना दिया जाए, एक बूंद पानी एंटर नहीं कर सकता, काम लेश मात्र भी प्रवेश नहीं कर पाया, भाग गया। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, हे मुनिवर, गोपियां कृष्ण को केवल अपना प्रेमी मानती थी, परम पूर्ण सत्य के रूप में नहीं मानती थी, तो फिर वे युवतियां मन प्रकृति के गुणों की लहरों में बह रहे थे, किस तरह से अपने आप को भौतिक आसक्तियों से रोक पाई? तो जो ये गोपियां थी ये तो भौतिक थी, है ना, उनके हिसाब से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं ताकि हम लोगों के लिए क्लियर हो जाए। गोपियां भौतिक थी, कृष्ण से प्रेम करती थी, तो वो सत्य परमात्मा के रूप में उनको कैसे देख पाए? तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं और कह रहे हैं ये विषय मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, परंतु मैं आगे आपको एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहे हैं, इसका वर्णन करते हुए, जो व्यक्ति अपने काम क्रोध भय रक्षात्मक स्नेह निर्विशेष एकत्व का भाव या मित्रता का सदैव भगवान हरि में लगाता है, वह निश्चित रूप से उनके भाव में तल्लीन हो जाता है, उन्हीं के भाव में तल्लीन हो जाता है। तो सारी इंद्रियां काम क्रोध लोभ गोपियों ने अपना भगवान में लगा दिया था, तो उनमें इतनी तल्लीन हो गई थी कि जैसे ईश्वर थे वैसी ही गोपियां बन गई थी। तो यहां पर जो गोपियां हैं वो कोई साधारण नहीं है। देखिए आप लिखा है, काम क्रोध भयम स्नेहम एक्यम सुहदम एवचा नित्यम हरो विदतम यान्ति तत् मायातम हियते, बिल्कुल उनके जैसी ही बन जाए। जैसे मिरर के अंदर शीशे में जब अपनी शक्ल देखते हो तो आप ही दिखाई देते हो, वैसे ही भगवान को देखने मात्र से उनको भगवान जैसा ही अपने अंदर बनना। शक्ति और शक्तिमान का मिलन, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि काम यहाँ पर प्रवेश, तो काम भाग गया था वहां से, और एक गोपी थी जो अपने पारिवारिक कार्यों के कारण वहां प्रवेश नहीं कर पाई, उसको वहां पर आने नहीं दिया उसके परिवार के लोगों ने, इतना विरह हुआ, इतना परकिया भाव उत्पन्न हुआ, इतना विरह हुआ कि उसके प्राण ही निकल गए। क्या हम मर सकते हैं भगवान के लिए? एक गोपी मर गई है भगवान के लिए, अपने देह त्याग दिया उन्होंने, भौतिक देह त्याग के आत्मा रूप से विराजमान हो गई रास नृत्य के अंदर, ये स्थिति है। इसको हम साधारण बड़े ही क्या चल रहा है, डांस हो रहा है, रास नृत्य ऐसे बोलते, मूढ़ाम ना अभी जानन्ति, मूढ़ लोग मूर्ख लोग मुझे जान नहीं पाएंगे, मनुष्यम तनुम आश्रितम, वो सोचते हैं मैं तो मनुष्य बनकर के प्रकट हुआ। तो भगवान के इस रास नृत्य को इतना साधारण ना ले, और कोई आपको यहां जितने लोग बैठे हैं अगर आपको इस पर चर्चा कोई करता मिले तो सुनना भी नहीं चाहिए, किसी टीवी के अंदर भी रास नृत्य का चर्चा सुनना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप काम से मुक्त नहीं है और आपने सुन लिया तो वो काम वासना की वृद्धि होगी, शीशे के अंदर दिखाई देता है ना, वैसे दिखाई देगा, इतनी ऊंचे स्तर का ये भाव है। भगवान के हृदय का प्राण रास पंचम है, आपने काम है और देख लिया पढ़ लिया या सुन लिया तो वृद्धि होगी, और आप काम मुक्त हैं भगवान को भक्त के रूप में भगवान के भक्त बन गए हैं तो आपका काम समाप्त हो जाएगा, काम तमाम हो जाएगा, काम का काम तमाम हो जाएगा। लेकिन उसके लिए भगवान को भगवान के रूप में और खुद को भक्त के रूप में 16 माला का नियम करता हो, 4 नियम पालन करता हो, एकादशी का व्रत करता हो, कार्तिक का व्रत करता हो, तपस्वी हो, ऐसा व्यक्ति इस रास अध्याय को पढ़ सकता है, सुन सकता है, जिसने अपने गुरु की कृपा से सुना हो, समझा हो, साधारण व्यक्ति ने। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है। शरद पूर्णिमा दिवस बहुत उत्तम दिवस है। इसमें बताया है आज के दिन चंद्रमा लाल रंग का होता है और व्यक्ति को निरोगी बना देता है। खीर बनाते हैं स्पेशल आज के दिन, और वो खीर बनाकर के रात्रि कीर्तन करना चाहिए। खीर को चंद्रमा की रोशनी में रख दें, रोशनी प्रवेश करेगी, बाद में प्रसाद रूप में जब प्रवेश हम उसको पाएंगे, पूरी काया निरोगी बन जाती है। लेकिन उसके लिए कीर्तन करना पड़ेगा। ऐसे नहीं रखकर सो गए, सुबह उठे खा लिया, थोड़ा बिल्ली ने खाया, थोड़ा हमने खा लिया, फिर हम रोगी बनेंगे, निरोगी नहीं बनेंगे। स्कंद पुराण के अंदर वर्णन है इस मास के बारे में, कार्तिक मास के बारे में। कार्तिका खलो वै मासम सर्व मासेषु च उत्तमम पुण्यम परमम पुण्यम पावनानां च पावनम। इस संसार में कोई पवित्र हो, पावनम च पावनम, उसको भी पवित्र कर सकता है। कोई सन्यासी हो, बहुत बड़ा भक्त हो, ये नहीं कह सकता कार्तिक वार्तिक हमारे लिए नहीं है। पावनम च पावनम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला वो वक्त है। कार्तिक खलो वही मासम, एक ही महीना है कार्तिक। सर्व मासे शुच उत्तमम, 12 महीनों में से सबसे उत्तम। पुण्यम परमम पुण्यम, इसमें कोई व्यक्ति छोटा सा भी काम करे भक्ति का, पुण्य प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति अंजाने में शशि रुक्मिणी द्वारका अधीश जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा यशोदा महारानी की, अगर कोई 3 दिन भी कार्तिक के नियम का पालन कर ले, 3 दिन, तो उसको उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भक्तिमय आध्यात्मिक, भौतिक का पालन नियम, आध्यात्मिक मनोकामनाएं पूर्ण होती। और कोई व्यक्ति अगर निरंतर सालों पे साल कार्तिक महीना भक्ति भावना के लिए रखता आ रहा है बिना किसी भौतिक इच्छा के, उसका तो कहना ही क्या। अभी वर्णन करेंगे। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, आप मुझे वर्णन करें, ऐसा क्या मैंने पुण्य कर्म किया कि मुझे आपकी पत्नी होने का कृपा प्राप्त हुई, ये बताइए। तो भगवान यहां पर वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे सत्यभामा, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। पद्म पुराण के अंदर यह लीला आती है और उसमें कहा गया, भगवान कृष्ण सत्यभामा को उनके पूर्व जन्म पिछले जन्म की कथा बताते हैं और कहते हैं, हरिद्वार के पास में एक स्थान था जिसे मायापुरी कहते थे। दिल्ली में भी एक मायापुरी है लेकिन यहां माया है, लेकिन मायापुरी जो हरिद्वार के पास था वहां पर हरि का वास था। मायापुरी हरिद्वार सतयुग में वहां पर अत्रि कुल में एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए जिनका नाम था देव शर्मा। देव शर्मा ब्राह्मण कार्तिक का व्रत करते थे, दीप दान करते थे, एकादशी व्रत करते थे, भगवान का जप करते थे, नियम बड़े शक्ति से पालन करते थे। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था गुणवती। गुणवती नाम की ये जो पुत्री थी देव शर्मा की, इसके गुण बहुत ज्यादा थे। इसके अंदर भी कार्तिक को लेकर के बहुत उत्साह रहता था। अब जो ये देव शर्मा थे, इनका एक शिष्य था जिसका नाम था चंद्र शर्मा। तो शर्मा लोग शर्मा में विवाह करते हैं। शिष्य भी था तो उनके अंदर गुण भी थे कि भक्त बनने योग्य था। तो अपनी पुत्री गुणवती के लिए चंद्र शर्मा नाम का इनको ये बहुत अच्छा लगा शिष्य, और विवाह संबंध कर दिया गया। चंद्र शर्मा, देव शर्मा, गुणवती, तीनों मिलके कार्तिक एकादशी सब पालन करते थे और निरंतर भगवान के नाम का जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सत्यभामा की जिज्ञासा बढ़ गई, बोली फिर क्या हुआ प्रभु। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, उसके बाद एक दिन कुश घास चाहिए थी। कुश घास के ऊपर जप किया जाता है बैठ करके, और कुश घास जो है, भगवान ने जब वराह अवतार लिया था तो भगवान की जब हिरणाक्ष के साथ युद्ध हुआ तो वो शरीर से जो रोंगटे गिरे, उन रोंगटों से कुश घास उत्पन्न हो गई। उस कुश घास को ढूंढने के लिए एक स्थान था और वहां पर स्पेशल हिमालय के अंदर उन स्थानों पर दोनों देव शर्मा और चंद शर्मा दामाद और ससुर जी, गुरु जी और शिष्य जो भी कहे, गए और ढूंढ रहे थे तो वहां पर एक राक्षस निकल आया। अब ये राक्षस जो होते हैं, प्रेत योनि में कहें या राक्षस योनि में कहें, ये नरभक्षी होते हैं और ये ज्यादा उस पर टूटते हैं जो भक्त होता है, क्योंकि इनको पता है भक्त का स्पर्श करने से मेरी मुक्ति हो जाए। तो ये उसके ऊपर टूटे और जाकर के खा लिया देव शर्मा को और चंद्र शर्मा को। लेकिन चंद्र शर्मा और देव शर्मा दोनों ही भक्ति भाव में थे, नाम कीर्तन कर रहे थे और कार्तिक के व्रत का पालन कर रहे थे कि एक वक्त खाते थे, फलाहार करते थे, जमीन पे सोते थे, बड़े निष्ठावान कार्तिक व्रत का पालन कर रहे थे। कार्तिक व्रत में पूर्ण भी नहीं हुआ था, बीच में ही प्राण चले गए, तो देखिए क्या फल मिला। दोनों के समाप्त हो जाने पर बाद में जब पता चला कि दोनों मर गए हैं, दोनों का शरीर छूट गया है, गुणवती अकेली रह गई, लेकिन गुणवती रोई नहीं, ये भगवान तूने क्या किया? उन्होंने कहा, भगवान तूने जो किया अच्छा किया, अब मैं दृढ़ता पूर्वक कार्तिक के व्रत का पालन करूंगी। पहले तो पति के लिए, पिता के लिए खाना बनाना पड़ता था, अब तो मैं क्या होंगी, दृढ़ पूर्वक सिर्फ रात दिन 24 घंटे आपका भजन करूंगी। कार्तिक के महीने का मतलब ये नहीं कि मैं दाल नहीं खाऊंगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा और फिर टीवी देखूंगा 4 घंटे, 2 घंटे बाजार में घूमूंगा, दिवाली की शॉपिंग करूंगा, ये कार्तिक का व्रत नहीं। कार्तिक के व्रत का मतलब है कि मैं अधिक हरि नाम का जप करूंगा, मैं अधिक श्रीमद् भागवत का पाठ करूंगा, मैं अधिक भगवद गीता पढ़ूंगा, मैं अधिक नियमों का पालन करूंगा। मैं इस महीने में जो 4 नियम हैं अगर गलती से टूट जाते हैं मानसिक रूप से भी, प्रयास करूंगा ना टूटे, उसे कार्तिक व्रत कहते हैं। ये नहीं कि मैं पत्तल में खाऊंगा, पलाश के पत्ते में खाऊंगा, ये भौतिक उपलब्धियों के लिए है। भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति के नियम बनाने पड़ेंगे, है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला। ज्यादा से ज्यादा कुछ पुण्य मिल जाएंगे, पुण्य पाके आप स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग जाने के बाद क्या होगा, शिने पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, पुण्य प्राप्त हो जाने पर नीचे आना पड़ा, क्या फायदा हुआ, इतने भूखे भी रहे और नीचे भी आ रहे। तो भक्ति की वृद्धि करनी है, भागवत पढ़ना है अधिक, रोज 1 घंटा पढ़ने के लिए प्रभुपाद ने कहा, तो हम ये कहें कि हम 2 घंटे पढ़ेंगे, 30 घंटे पढ़ते हैं हर महीने, तो 60 घंटे पढ़ेंगे इस बार कार्तिक के महीने। रोज 16 माला का जप करते हैं 2 घंटे, तो अब इस बार 4 घंटे 32 माला का जप करेंगे या 3 घंटे 25 माला का जप करेंगे, ये नियम लेना। रोज बेड पे सोते हैं तो आज जमीन पर सोएंगे, इसलिए नहीं कि जमीन पर सोएंगे तो सोते ही रह जाएंगे, है ना, जमीन पर सोएंगे ताकि जल्दी सुबह उठ सके और भगवान का दर्शन करने के लिए। ये नहीं कि जमीन पर सोए, 4 बजे उठे, थोड़ा टहले और फिर जाकर सो गए। श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, प्रभुपाद ऊर्ज व्रत आने वाला है, क्या करें भक्त? प्रभुपाद ने कहा, नो ईटिंग नो स्लीपिंग, न खाओ न सो, क्या करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये कहा शुभ। नो ईटिंग नो स्लीपिंग ओनली 24 आवर चैंटिंग हरे कृष्णा, कर सकते हो? बोले फिर ये नकली दाढ़ी बढ़ा लेना, बाल बढ़ा लेना, एक सब खाना नहीं खाना, बोले ऐसे नियम नहीं रखना। वो नियम जो आपको भक्ति के नियम में मदद करे वो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इतने कमजोर हो गए खाना ना खाने के कारण कि मंगला आरती छूट रही है, जब भी नहीं हो पा रहा, बोले बहुत कमजोर हो गया, 1 महीने से खाया नहीं है मैंने, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। भक्ति में वृद्धि हो वो नियम हमें लेने हैं। तो इस प्रकार से देव शर्मा चंद्र शर्मा के चले जाने पर गुणवती ने दृढ़ता पूर्वक भक्ति के नियम लिए, रोज भागवत का पाठ किया, रोज हरिनाम का जाप किया और एक दिन बूढ़ी हो जाने पर, मतलब जवानी की अवस्था से बुजुर्ग अवस्था तक जर्जर शरीर हो गया, तब तक लगातार भक्ति करती रही। और एक दिन सुबह सुबह स्नान करने की विधि है, कहते हैं कार्तिक के महीने में प्रात स्नान का बहुत महत्व है। 5 नियम कार्तिक के महीने में बड़े मुख्य हैं। हरि जागरणम प्रातः स्नानम तुलसी सेवनम उद्यापनम दीप दानम व्रतानि एतानि कार्तिकः। कार्तिक में पांच नियम अवश्य करने चाहिए। हरि जागरणम, एक ना एक दिन हरि का जागरण करना चाहिए, पूरी रात कीर्तन करें। प्रातः स्नानम, सुबह मंगला आरती से पहले स्नान हो, 4:30 बजे मंगला आरती होती है तो 4:30 पर स्नान हो जाए। तुलसी सेवनम, तुलसी महारानी की सेवा हो, जल दिया जाए, परिक्रमा हो, दीप दान हो। उद्यापनम, जो व्रत किए हो, जैसे आपको कुछ पसंद है कि मैं एक महीने में एक ही टाइम खाऊंगा, तो कुछ भक्तों को खाना खिलाने के बाद ही खाना खाना है दूसरे वक्त, या मैंने मिठाई छोड़ दी है तो मैं सबको वितरित करने के बाद ही खाऊंगा, मैंने तेल छोड़ दिया, जो भी नियम है। उद्यापन करने का मतलब है कि सबको खिलाने के बाद खाना। और दीप दानम, रोज मिट्टी का दिया भगवान को दान करना है, मतलब नया मिट्टी का दिया होना चाहिए, ये नहीं पुराने दिए में ही लगे पड़े हैं सुबह भी शाम भी। रोज नया मिट्टी का दिया, 30 दिन में 30 दिए एक व्यक्ति के खर्च होंगे, सुबह शाम करें तो अच्छा है, वरना शाम को तो करना ही चाहिए। व्रतानि एतानि कार्तिका, कार्तिक का व्रत बस इतना ही है, इतना सा कर लेगा कोई व्यक्ति तो उसको क्या प्राप्त होता है। देखिए, गुणवती ने जब ये किया, जर्जर शरीर था, प्रातः स्नान करने के लिए पहुंच गई। जब वो कुंड के किनारे स्नान कर रही थी तो उनका पांव स्लिप हो गया, फिसल गया। पांव फिसलने से गुणवती उसी के अंदर पानी में प्रवेश कर गई। पानी में प्रवेश किया तो लोग आए बचाने के लिए, तो उसने कहा बचाओ मत, ठंड लग रही है, शरीर में बुखार था, बुखार के समय भी ठंडे पानी में स्नान कर रही है ना। अब लोग घबरा जाते हैं, बोले बी प्रैक्टिकल, ठंडा नहीं, एक्चुअली बुखार आ जाएगा। ये हम अपने को जितना संभाल के रखेंगे उतना माया में ग्रसित होंगे, हम जितना भगवान के अंदर शरणागति करेंगे उतना भगवान माया को हमसे दूर भगा देंगे। गुणवती ने वही किया, पूरा का पूरा अंदर प्रवेश कर गई, बुखार था शरीर में, फिर भी ठंडे पानी में गई और बीमारी के कारण शरीर समाप्त हो गया। समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा, वो गुणवती तुम ही हो। सीधा भगवान का धाम प्राप्त हुआ। तो उन्होंने कहा, लेकिन मेरे पिता का क्या हुआ और मेरे पति का क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, तुम्हारे जो पिता हैं सत्यभामा, वही द्वारका में 17 जीत नाम के राजा हैं, और जो तुम्हारे पति थे वो अक्रूर बनकर के वृंदावन में, मथुरा में कंस के महल में पैदा हुए हैं, अक्रूर जीवन है। और मैंने जो तुलसी की सेवा करी, उस तुलसी की सेवा करने के कारण सत्यभामा तुम्हारे घर के सामने कल्प वृक्ष लगा हुआ है, जो तुम चिंता करती हो वो चीज तुम्हें प्राप्त हो जाती। कल्प वृक्ष मतलब जैसा सोचूं वैसा प्राप्त हो जाए, दाल चावल रोटी सब्जी खीर बनाने की टेंशन नहीं, माता जी को सामने प्रकट हो जाए कल्प वृक्ष। तो ये कैसे प्राप्त हुआ कल्प वृक्ष? खाली तुलसी को दीपदान करने, तुलसी सेवा करने। बहुत बड़ी महिमा है ना कार्तिक व्रत की। तो इस प्रकार से सत्यभामा को जब भगवान कृष्ण ने बताया, सत्यभामा बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने वर्णन किया कि हर व्यक्ति को इस कार्तिक मास को अवश्य रखना चाहिए। स्कंद पुराण में कहते हैं, न कार्तिका समो मासो न कृतेन समम युगम न वेद सदशम शास्त्रम न तीर्थ गंगाए समम कार्तिका पर्वरो मासो वैष्णवानां प्रिय सदा कार्तिकम स्कलम यस्तो भक्त्या सेवते वैष्णवः। न कार्तिक समो मासो, कार्तिक के समान कोई महीना नहीं है। न कृतेन समम युगम, न सतयुग के बराबर कोई युग है। न कृते समा युग, ना ही सतयुग के समान कोई युग है। न वेद सदशम शास्त्रम, ना ही वेद कोई है, शास्त्र में जो वेद है भागवत जैसा है ऐसा कोई नहीं है। गंगा जैसा कोई तीर्थ नहीं है, कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं है, इसलिए वैष्णव इसको बड़ी दृढ़ता से पालन करते हैं। इस महीने में ध्यान पूर्वक आज के दिन व्रत लेना चाहिए। कार्तिका अहम करिष्यामि, मैं कार्तिक का व्रत करूंगा। प्रातः स्नानम जनार्दन, हे जनार्दन, सुबह उठकर मैं आपके लिए नहाऊंगा। इसलिए नहीं नहाऊंगा कि बच्चों को स्कूल भेजना है, इसलिए नहाऊंगा कि मुझे सुबह उठना है। प्रीति अर्थम तवा देवेश, हे देवेश, ताकि आपसे प्रीति हो। देवेश मतलब जो देवताओं के ईश्वर हैं, देवेश आपसे प्रीति हो। प्रीति अर्थम तवा देवेश दामोदरम मया सह, हे दामोदर मैं आपको प्राप्त करने के लिए, आपकी प्रेम को प्राप्त करने के लिए इस महीने को रख रहा हूं, है ना। और फिर जब स्नान करते वक्त भी कुछ मंत्र बोले जाते हैं, जैसे है तव ध्याने न देवेश, हमेशा भगवान कृष्ण का ध्यान करते हुए स्नान करना है, ये नहीं ठंडे पानी से ऐसे करते हुए। तव ध्याने न देवेश जल अस्मिनिम स्नातुम उद्वत त्वत् प्रसादश्च मे पापम दामोदरम विनश्यतु, हे दामोदर मैं आपको प्रसन्न करने के लिए स्नान कर रहा हूँ, आपका चिंतन करते हुए स्नान कर रहा हूँ, आप कृपा करके क्या करिए, मेरे पापों को विनाश करिए और अपनी भक्ति में लगाइए। ऐसा चिंतन करना चाहिए। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो कम से कम इतना बोलना चाहिए स्नान करते वक्त, यमुना मैया गंगा मैया की जय, और बोलना चाहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम यहीं पर अपना क्लास समाप्त करेंगे। हमारे बीच में है हिज ग्रेस चंद्रशेखर प्रभु, चंद्रशेखर प्रभु इज ए प्रभुपाद डिसाइपल, तो वो आज हमारे बीच में है, तो हम उनसे कार्तिक के कुछ महिमा सुनेंगे, तो हम इसके आगे वर्णन अगली क्लास में करेंगे। और अभी हम प्रभु जी के वेलकम।
मुझे पता है सारे भक्त बहुत मतलब रैप्ड अटेंशन के साथ प्रभु जी को सुन रहे थे, और आई एम एक्सट्रीमली सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बीच में। प्रभु जी जो है मतलब हमारे प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमारे मंदिर के आन बान सब शान सब हैं और बढ़ाते रहते हैं शोभा को अपने शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, लेकिन क्योंकि प्रभुपाद डिसाइपल चंद्रशेखर प्रभु जी हमारे साथ हैं, तो प्रभु जी आज फ्लाई करने वाले, फ्लाई बैक, ही विल बी फ्लाइंग बैक टू यूएस आफ्टर फ्यू मोमेंट्स लाइक आफ्टर फ्यू आवर्स, तो क्योंकि अभी चंद घंटों के बाद प्रभु जी चले जाएंगे, यूएस चले जाएंगे, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि प्रभुपाद जी की ग्लोरीज कुछ प्रभु जी से सुने, तो हम प्रभु जी का स्वागत करेंगे बाय चैंटिंग, लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं स्पेशली कोशिश करूंगा अमोघ लीला प्रभु जी को प्रार्थना करूंगा कि प्रशांत मुकुंद प्रभु जी के जो क्लास है, आज का क्लास कल हम फिर से कंटिन्यू करें, और जो भक्त हैं वो मतलब आप सब भक्त फिर से सुन पाए वो कार्तिक के महिमा। आज हम प्रभुपाद जी के महिमा सुन लेते हैं प्रभु जी के मुखारविंद से हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके हम धन्यवाद देंगे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी को। प्रभु जी बहुत अच्छे से सुन रहे थे, सुना रहे थे, और प्रभु जी भी बोल रहे थे आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, लाइक ऑल द ऑडियंस ऑल द डिवोटीज आर लिसनिंग विद रैप्ड अटेंशन, आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब हिम, लेकिन क्या है प्रभु जी को ये करना पड़ा क्योंकि प्रभु जी आज ही जा रहे हैं। अगर कल तक होते तो शायद प्रभु जी का सारा क्लास। थैंक यू। हरे कृष्ण।